दोपहर के 12 बज रहे थे और सूरज आसमान में चमक रहा था। दोपहर के वक्त शांति से छाई हुई थी। उन सबके बीच जंगल में रिवांश ने त्रिशान पर हमला बोल दिया था। त्रिशान अपने इंसानी रूप में था, जहां वो बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पूरे शरीर पर जख्म बन गए थे, जिनसे खून नजर आ रहा था। रिवांश ने त्रिशान के कंधे पर अपने दांत लगाकर धीरे से कहा, बस एक बार और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, फिर तुम्हें अपनी औकात समझ आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रात हम पर हमला करने की? हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर रहेंगे। ये तुम्हें क्या हो गया रिवांश? संभालो खुद को, तुम ये नहीं हो। याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे? आकांक्षा, आकांक्षा, याद है तुम्हें? त्रिशान की मुंह से आकांक्षा का नाम सुनकर रिवांश को एक झटका सा लगा और उसने अपने एक हाथ से त्रिशान को दूर फेंक दिया। इस वक्त रिवांश से लड़ना सही नहीं होगा, मुझे दादू से बात करनी होगी और उन्हें इसके बारे में बताना होगा, त्रिशान ने सोचा और जैसे तैसे करके वहां से भाग गया। उसके जाते ही रिवांश से अपने असली रूप में आ चुका था। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उसे सोचकर उसका सर चकरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? हमने त्रिशान पर हमला क्यों किया? हम उस पर हमला नहीं करना चाहते थे। रिवांश अपने अंदर की बुराई से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमें आकांक्षा से बात करनी होगी, हमने वो सब जानबूझकर नहीं किया, त्रिशान हमें माफ। जैसे ही रिवांश त्रिशान से बात करने के लिए पीछे मुड़ा, उसे वो दिखाई नहीं दिया। लगता है त्रिशान हमसे डरकर चले गए हैं, कहीं वो आकांक्षा को जाकर सब कुछ बता ना दे। हमने उनसे वादा किया था कि हम अब किसी की जान नहीं लेंगे। हमें आकांक्षा से बात करनी होगी, अब तो हम सूरज की रोशनी में बाहर भी जा सकते हैं। आकांक्षा से बात करने के लिए रिवांश जंगल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एक बार फिर वहां पड़ी मूर्तियों पर गई। सूरज की रोशनी में रखी उन मूर्तियों की आंखें बंद थी। जब से ये मूर्तियां हमें मिली है तब से कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं इन सब की वजह से तो नहीं हो रहा? वो बूढ़ा आदमी वो कौन था जो अचानक हमसे मदद मांगने आया था? इन मूर्तियों को देखा जाए तो ये काफी कीमती लग रही हैं, लेकिन अब तक वो उसके बारे में पूछने के लिए यहां नहीं आया। ऊपर से अचानक उसके ड्राइवर का गायब होना, हमें तो ये किसी की सोची समझी साजिश नजर आ रही है। रिवांश उन मूर्तियों को देखने के लिए, उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने हाथ रोक लिए और कहा, नहीं, हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। पिछली बार भी हमने इन्हें छुआ था, जिसके बाद से हमें ये अजीब अनुभव हो रहा है। हमें आकांक्षा से मिलकर उससे इस बारे में बात करनी होगी। रिवांश उन मूर्तियों को वहीं छोड़कर आकांक्षा से मिलने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ से खून से लथपथ रिशान जादूगरनी अलीजा के पास गया। अलीजा अपने घर में कुछ केमिकल्स को आपस में मिलाकर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। अलीजा, प्लीज प्लीज सेव मी, लड़खड़ाते हुए त्रिशान अलीजा के पास आकर गिर गया। त्रिशान की हालत देखकर अलीजा ने हैरानी से पूछा, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें लेप लगाकर ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अलीजा ने आगे आकर त्रिशान को कंधे का सहारा दिया और उसे कमरे की तरफ ले गई। ये कोई मामूली जख्म नहीं है अलीजा, तभी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द इनको ट्रीट करना होगा। ये सब मेरे साथ रिवांश ने किया, त्रिशान ने कराहते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अलीजा ने गुस्सा होकर कहा, तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा है और बातों से भी काफी मासूम नजर आ रहा था। उसकी मासूमियत सिर्फ एक दिखावा थी? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे वो लॉकेट कभी नहीं देती। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। त्रिशान की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ रहे थे। अलीजा और त्रिशान एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे और अच्छे दोस्त भी थे। उसे उस हालत में देखकर अलीजा को रिवांश पर गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर त्रिशान के साखमों पर लगाने लगी। लेप लगाने के बाद त्रिशान दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, अलीजा क्या तुम दादू को यहां बुला दोगी? मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता मैं बच भी, त्रिशान ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। अलीजा मैं तुम्हें कुछ नहीं होगी, राजपुरोहित जी हमसे बहुत दूर है, वो यहां तक पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। दादू शिमला में ही है, उन्हें पता होगा कि इन घावों को कैसे सही किया जा सकता है। अलीजा ने त्रिशान की तरफ देखा, जिसके घावों पर लेप लगाने के बावजूद भी उसके दर्द में कोई राहत नहीं लग रही थी। उसके घाव सही होने के बजाय बढ़ते जा रहे थे। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ, अलीजा ने जल्दी से राजपुरोहित जी को फोन घुमाया। राजपुरोहित जी उस वक्त राजवीर जी के घर पर थे और उनके साथ उनके घर का मुआयना कर रहे थे कि तभी उनके पास अलीजा का कॉल आया। राजपुरोहित जी, मैं अलीजा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन त्रिशान इस वक्त मेरे पास है और अभी इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, अलीजा ने तड़पते हुए त्रिशान की तरफ देखकर कहा। क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना? राजपुरोहित जी त्रिशान का सुनकर बुरी तरह घबरा गए। वहीं उनकी बात सुनकर आकांक्षा और जानवी को भी टेंशन होने लगी। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ, कहकर राजपुरोहित जी ने फोन कट कर दिया। मुझे अभी के लिए जाना होगा, आप मुझे इस पते तक पहुंचा देंगे? राजपुरोहित जी ने राजवीर जी से पूछा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? राजवीर जी ने कहा। जी वो लड़का, मेरी जान पहचान में कोई लड़का किसी वजह से घायल हो गया है, मुझे अभी उसके पास जाना होगा, राजपुरोहित जी ने कहा। राजपुरोहित जी की बात सुनकर आकांक्षा और जानवी को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो वो त्रिशान की बात कर रहे हैं। राजपुरोहित जी की बात सुनकर आकांक्षा ने कहा, दादू मैं और जानवी भी कॉलेज जाने का सोच रहे थे, अगर आप गाड़ी की चाबी दे देंगे तो हम दोनों राजपुरोहित जी को रास्ते में छोड़ देंगे। लेकिन तुम ड्राइव कर लोगी क्या? राजवीर जी ने कहा। आकांक्षा ने हामी भरी तो राजवीर जी ने उन्हें गाड़ी की चाबी दे दी, जिसे लेकर आकांक्षा और जानवी राजपुरोहित जी को लेकर जाने लगी। रास्ते में जानवी ने पूछा, राजपुरोहित जी त्रिशान को क्या हो गया? पता नहीं, मुझे उसके किसी दोस्त का फोन आया था और उसने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे उसे अकेले उन मूर्तियों के पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था, हो ना हो उसी वजह से उसे कुछ हुआ होगा। राजपुरोहित जी के शब्दों में उनकी चिंता साफ जाहिर हो रही थी। आकांक्षा और जानवी भी त्रिशान के लिए परेशान हो रही थी। थोड़ी देर में वो लोग अलीजा के घर के आगे थे। वहां पहुंचते ही वो लोग जल्दी से अंदर पहुंचे तो त्रिशान दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, उसके पूरे शरीर पर लाल जख्म हो गए थे। अलीजा उसका दर्द काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन त्रिशान की हालत बिगड़ती जा रही थी। क्या हुआ इसे, ये सब किसने किया? राजपुरोहित जी जल्दी से त्रिशान के पास आकर कहा। ये सब उस पिशाच ने किया है, मुझे पता होता कि वो इस तरह का है तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करती, देखिए ना क्या हालत करती है उसने, अलीजा ने दुखी मन से कहा। त्रिशान को बुरी तरह तड़पते देख आकांक्षा और जानवी को बहुत बुरा लग रहा था। ऊपर से अलीजा के मुंह से जब आकांक्षा ने यह सुना है कि ये सब रिवांश ने किया है तो वो रिवांश के लिए परेशान हो गई। रिवांश ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कई दिन तक रही हूँ, जरूर त्रिशान ने उसके ऊपर पहले हमला बोला होगा। त्रिशान मस्ती मजाक करता रहता है लेकिन रिवांश सीरियस है, हो सकता है इस वजह से उसे गुस्सा आ गया होगा, आकांक्षा ने बीच में आकर कहा। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया दादू, मैं बच पाऊंगा क्या? त्रिशान ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा।
त्रिशांत के घाव मामूली नहीं थे और इस वक्त उसका सवाल बिल्कुल सही था। रिवांश से दिए घावों से क्या वो सच में बच पाएगा?